الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ سورہ ہود شروع کر رہے ہیں. سورہ ہود مکی سورت ہے اور اس میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. اس صورت میں اور بھی انبیاء کا ذکر ہے مگر ہود علیہ السلام کا نام مبارک 5 دفعہ آیا ہے جو کسی اور صورت میں نہیں ہے. عاد ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ بات صرف اس صورت میں کلیئرلی بتائی گئی ہے. آپ اس صورت کا پیٹرن دیکھیں گے کہ پہلی جو 24 آیات ہیں جو ہم آج پڑھیں گے بھی ان میں توحید کا ذکر ہے. اس کے بعد 6 انبیاء کی قوموں کا ذکر ہے جیسے کہ ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں اور ان کے انجام کا بھی ذکر ہے. اسی طرح اینڈ میں جا کے 24 آیات میں دوبارہ توحید کا ذکر ہے. تو ایک سیکوینس میں یہ سورت چلتی ہے. 10 رکوعات ہیں اور اس طرح سے یعنی فرسٹ 24 آیات پھر قوموں کا ذکر اور ان 6 نبیوں کا اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے مگر ان کی قوم کی تباہی کا ذکر نہیں ہے. اور اینڈ کی جو 24 آیات ہیں ان میں پھر توحید ہے. یہ سورت ہجرت سے کچھ پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی اور سورہ یونس آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہی یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ کیسا ہوگا یعنی کتنا مشکل زمانہ ہوگا کہ اس کے بعد ہجرت کا حکم آ گیا. یعنی انتہائی شدید حالات تھے, بہت ظلم و ستم بڑھ چکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی. آپ دیکھیں گے یہ سورت کافی سملر ہے سورہ یونس سے اور یہ وہ سورت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی آئے سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور ان میں کون سی؟ سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ نبا, سورہ تکویر, یہ سورتیں ہیں جو یہ ترمذی میں روایت ملتی ہے ہمیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں سورت کو. آج ہم انشاءاللہ 1-24 کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, حروف مقطعات. جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. سورہ یونس بھی انہی حروف کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور وہاں پہ اس کی تفصیل میں بتا چکی ہوں. کتاب ان کتاب ہے, احکمت, پختہ ہو گئیں یا پختہ کی گئیں بہتر ہے, پختہ کی گئیں آیات, اس کی آیات. ثم فصلت, پھر فصلت جیسے آپ تفصیل کہتے ہیں اردو میں بولتے ہیں تو تفصیل کر کے بیان کی گئیں, کھول کھول کے بیان کی گئیں. کس کی طرف سے؟ ملدن, اس کی طرف سے, اس کے پاس سے جو حکیم ہے اور خبیر. اب دیکھیں یہ سورت भी हरूफ मुकत्तआत से शुरू हो रही है, और जब भी हरूफ मुकत्तआत से कोई सूरत शुरू होती है आप देखें अक्सर उसके बाद कुरान पाक के मुतल्लिक बात की जाती है। यहां पे भी कुरान की आयात के बारे में बात की गई कि वो मोहकम है और मुफस्सल है, दो इसकी शान बयान की गई आयात की कि कैसी आयात है कुरान में। ये ऐसा कलाम है जिसकी आयात मोहकम भी है, मोहकम हाकाफ मीम से, अहकाम भी इसी से है यानी मजबूत जामे पक्की कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है, मोहकम है और उनमें तफसील भी है। तो यानी यहां पर मोहकम और मुफस्सिल दो दो अल्फाज को का समझने तकाबुल किया गया, इनका कंपैरिजन है या इनके साथ इसको बयान किया गया। वैसे तो मोहकम का माना मैंने बताया कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और हर वो चीज जो आसानी से समझ आ जाए वो भी मोहकम होती है, इसका माना समझ आ जाए। लेकिन जब ये मुफस्सल के मुकाबले में लाया गया ना ये लफ्ज, तो इसका माना क्या हुआ कि कुरान की आयात जो हैं वो मोहकम है यानी उनके अंदर जामियत है, वो कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़े से अल्फाज के अंदर बहुत बड़ी बात कर दी गई है और मुफस्सल भी है तफसील भी है। तो अल्फाज के लिहाज से जामे है और माने के लिहाज से तफसील है। आप देखिए ना एक एक लफ्ज है, एक लफ्ज होता है या एक आयत होती है, अब देखिए मैं उसकी कितनी लंबी तफसीर करती रहती हूँ फिर भी इसका हक नहीं अदा हो पाता, इसके माने इसकी डेप्थ इतनी है। जैसे हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कुरान के अजाइब कभी मुकम्मल नहीं हो सकते और ना ही ये कभी पढ़ पढ़ के पुराना हो सकता, यानी आप हमेशा जब भी इसको पढ़ेंगे ना तो इसमें कोई एक नया पन्ना पाएंगे, माने की एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी। तो इस एतबार से कुरान पाक जो है वो मोहकम है, इसके लफ्ज मोहकम है और उसके माने में बड़ी तफसील है। तो मुख्तसर भी है और तफसील भी है, और एक तो इसका ये माना मैंने बता दिया, दूसरा इसका माना ये है कि कुरान की बाज आयात मोहकम है और बाज मुफस्सल है। जैसे आप देखें सूरतें भी, शुरू की जो सूरतें हैं वो क्या है, मोहकम है, और जो बाद में मदीना में नाजिल हुई सुम्मा आ गया ना, सुम्मा तराखी के लिए आता है यानी वक्त बाद के, इसके बाद ये हुआ, जैसे हम उर्दू में बोलते इसके बाद ये, यानी पहले मोहकम थी फिर उसके बाद मुफस्सल हो गई। तो उसके बाद आप देखें कि फिर सूरह बकरा सूरह निसा आले इमरान कितनी लंबी लंबी हैं, इसके मुकाबले में आप मक्की सूरतें 30वें पारे में मक्की सूरतें हैं सारी, वो कितनी मुख्तसर सी हैं। तो पहले मोहकम थी और यानी मुख्तसर और उसके बाद मुफस्सल हो गई, और ये भी माना कि इसकी आयात मोहकम है यानी मुख्तसर है लेकिन माने के लिहाज से समंदर है उनमें। तो और ये किसकी तरफ से है, जो सब कुछ की खबर रखता है और जिसकी पास हिकमत है, यानी सबकी खबर उसको है और हिकमतें भी उसके पास हैं, ऐसी जात का ये कलाम है। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अब ये बात है जो क्रक्स है सारे कुरान का खुलासा इस एक बात में है, सारी जितनी भी तफसीलात हैं वो इस एक बात में इस एक पॉइंट पे हैं, और वो क्या है कि ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की यानी तौहीद। तौहीद के ऊपर इसके अंदर बात है कि सारा कुरान आपको जैसे पहले भी बताया था कि तौहीद की तरफ लेकर आता है, तौहीद इसका जो एक वर्ड में इसकी समरी की जाए तो तौहीद। तो यानी इंसान का जो मकसद हयात है वो ही ये है कि वो अल्लाह की इबादत करे, इसकी जिंदगी का मकसद है ये, और इसके लिए अल्लाह ताला ने ये कुरान उतारा कि तुम ना इबादत करो मगर सिर्फ अल्लाह की, कि इबादत के लायक तुम्हारी सजदों की, तुम्हारी नमाजों की, तुम्हारी दुआओं की, तुम्हारी उम्मीदों की, तुम्हारे तवक्कल की हकदार सिर्फ वो एक जात है, उसके सिवा कोई भी नहीं। लिहाजा सब की नफी पहले करो, नो से नो टू एवरीथिंग एंड एवरीबडी, जिसको भी दुनिया में पूजा जाता है, जिसको भी खुदा बनाया गया है, सबसे पहले उन सब की नफी। कोई राजिक नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई कोई भी मेरा नफा नुकसान करने वाला नहीं, कोई भी मेरा रोजी रसा नहीं, कोई भी मुझे शिफा देने वाला नहीं, कोई और भी मेरी बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई और भी मेरा मुश्किल कुशा नहीं। सब पे पहले नहीं 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 करेंगे तो फिर आता है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और अगर ये कहना अल्लाह तो देता है लेकिन ये भी जो है ना अल्लाह के हाँ बड़े वो हैं, ये भी कुछ करते हैं हमारा, इनके पास भी मेरा कोई फायदा पड़ा हुआ, तो फिर तौहीद खालिस नहीं है आपकी। जब तक सबकी नफी ना करते, किसी मिजार वाला, कोई कब्र वाला, कोई जिन्नों वाला, कोई जादुओं वाला, कोई तावीज गंडे बांधने वाला, कोई भी और असरो रसूख रखने वाला, कोई भी मेरा कुछ नफा नुकसान नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही है जो कि मेरा मददगार है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना हो। क्या इसके अंदर हम ये समझते हैं कि हम इंसानों से मदद नहीं मांग सकते? नहीं, इंसानों से आप मदद मांग सकते हैं। आप अपने बेटे को कहते हैं पानी लेकर आओ, तो ये भी तो मदद मांगना है। हाँ, अपने बच्चे से कहते हैं जाओ मुझे कोई चीज पकड़ा दो, तो ये भी तो मदद मांगना है। तो क्या ये शिर्क हो गया? नहीं, ये शिर्क नहीं है। आप जिंदों से कोई चीज कह सकते हैं जो आपके सामने, आप उसे कह सकते हैं भी ये करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के लिए कोई बात कही, ये करके आओ, ये ऐसा करो, तो ये मतलब नहीं है। बल्कि मतलब ये कि गैबी किसी को ताकत समझना, कि हजरत अली दुनिया से जा चुके हैं लेकिन वो हमारी मदद करने पे कादिर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं लेकिन वो भी हमारे कोई काम करेंगे, आप हजरत अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया से चले गए हैं लेकिन वो भी हमारी कश्ती पार लगाएंगे, वो भी हमारा कुछ बिगड़ी बना सकेंगे। ये सारी फिर शिर्क की बातें हो जाती हैं। यानी आपने अल्लाह ताला के साथ उनको शरीक कर दिया कि ये भी कोई ताकत रखते हैं, ये भी कोई ताकत रखते हैं ऐसे काम करने की कि ये दुनिया में नहीं भी है तब भी हमारी सुन रहे हैं, और तब भी इनके अंदर, खुद के अंदर ताकत है हमारी मुश्किलों को हल करने की। तो शिर्क की हर फॉर्म से बचना है, हर तरह के शिर्क से अपने आप को दूर रखना है, और उम्मीदें अल्लाह ताला से ही रखनी है, तवक्कल अल्लाह पे ही करना है, भरोसा हमारा हमारे रब पे ही होना चाहिए। और शैतान आके इसी तरह इंसानों को, उसको पता है कि जो मुसलमान है वो किसी पत्थर के बुत के आगे तो नहीं झुकेगा, इससे तो वो मायूस हो चुका है, लेकिन आप उसको और तरह के शिर्क में वो मुब्तिला करता है। तो हर तरह के शिर्क से अपने आप को बचा के रखना है, हत्ता के शिर्के खफी से भी, कि छुपा हुआ शिर्क जो रियाकारी है उससे भी अपने आप को बचा के रखें, कि मेरा जो नेक अमल है वो मेरे रब की खातिर है सिर्फ, किसी और के लिए नहीं। उस स्पेशल गिफ्ट में उसके लिए अपना हदिया पेश करती हूँ मैं, अपनी कोई काम, कोई इबादत, कोई जैसे भी टूटी फूटी है मैं अल्लाह के लिए पेश करती हूँ, इसके अंदर ना किसी को शरीक करें। औरत तो बर्दाश्त नहीं करती कि वो अपने खामिद को किसी के साथ शेयर करे, और अल्लाह ताला के साथ पार्टनर बनाते। इन्नी लकुम मिन्हु नदीरुम व बशीर, और बेशक मैं तुम्हारी तरफ खबरदार करने वाला और बशारत देने वाला बना के भेजा गया हूं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए कि वही की गई कि आपको अल्लाह ताला नजीर और बशीर बना रहा है, नजीर और बशीर बना के अल्लाह ताला ने आपको भेजा है। इन्ना अरसलनाक बशीर व नजीरा। तो बाज जगह पे आप देखेंगे बशीर पहले और नजीर बाद में, बाज जगह पे नजीर पहले। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है ना, ये आपका रोल बताया जा रहा है कि आपका क्या रोल है, आपने क्या रोल अदा करना है दुनिया में रिसालत मिलने के बाद। तो शुरुआत जो आपकी जो दावत की थी ना, वो नजीर से थी, यानी खबरदार करने से। आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ पर चढ़ गए थे और फिर लोगों को बुलाया था और फरमाया था, अगर मैं तुम्हें कहूं कि जबले अबी कुबैस के पीछे कोई लश्कर छुपा हुआ तो मेरी बात मान लोगे? वो कहने लगे हम मान लेंगे। और बुलाया कैसे था, या सबाहा कह के। और या सबाहा तब कहा जाता था जब कोई खतरे की बात होती। तो यानी इंतजार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की अपनी तबलीग। तो ये नजीर और बशीर असल में क्या है, नजीर क्या है, नजीर है वॉर्न करना कि देखो अगर तुम अल्लाह की इबादत से इनकार करते हो तो ये बुरा अंजाम है जो आगे। और बशीर क्या है, इसी बशारत देना कि अगर तुम अल्लाह के बंदे बन के चलते हो तो देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कितने इनामात रखे। फिर आप देखें जो वही भी आई थी, जो बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए जो वही आई, तो गालबन दूसरी वही थी, या अय्युहल मुद्दतिर खुम फअंदिर, ए कमली ओढ़ के लेटने वाले उठ और इंतजार कर। ये नहीं फरमाया तबशीर कर, लोगों को बशारते देना शुरू कर दे, क्योंकि देखें जैसे लोग और जो उनके हालात और जो माहौल होगा उसी के मुताबिक होगा ना। अब ऐसे तो हालात नहीं थे कि जिसके अंदर वो बशारतें देते, बल्कि इस वक्त जरूरत थी कि तुम किधर जा रहे हो, किस रास्ते पे चल रहे हो, ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। और याद रखें जब आप लोगों को, जो बिगड़े लोग हैं उनको जब तक इंतजार नहीं करेंगे ना, तो तबशीर से फायदा नहीं होगा। वैसे लोग कहते नहीं नहीं अच्छी अच्छी बातें करें वरना वो कहीं डर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब देखिए जो तबशीर होती है ना, वो इंसान के अंदर चेंज लेकर आती है। जैसे मसलन है, आप कहीं बैठे में आपको कोई कह दे जी बाहर बड़ा ही खूबसूरत सीन है, आके देखें, हो सकता है आप जाएं या नहीं जाएं, और बड़ी ही खूबसूरती है, बड़ा ही है, आप हो सकता है ना जाए कि मैं बड़ी मसरूफ हूं। लेकिन आपको अगर कोई कह दे अल्लाह माफ करे कि इस कमरे में सांप है, तो कितना मर्जी आपका काम होगा, आप उठ के चीखे मारते हुए दौड़ेंगे। तो ये जो खौफे खुदा लोगों में पैदा करना है ना, कि अल्लाह को जवाब देना है, ये लोगों तुम समझते हो कि एक दिन तुम्हें अल्लाह के आगे खड़े होना है, ये चीज इंसान को बदलती है। सिर्फ मीठी मीठी बातें कर देना, जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, इससे ठीक है एक शौक तो पैदा होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज अक्सर नहीं आता। ठीक है, आप देखें वो लड़की जिसने अपनी माँ से कहा था कि दूध में पानी ना मिला, तो माँ ने क्या कहा था, हजरत उमर जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, एक घर के बाहर गश्त करते हुए, घर के बाहर खड़े हुए और अंदर से आवाजें ये आ रही हैं कि अम्मा दूध में पानी ना मिला, तो माँ कहती है कि नहीं, माँ ने उसकी बात को नहीं तवज्जो दिया। कहने लगी आपको पता है कि अमीरुल मोमिनीन का कोड़ा बड़ा सख्त है, यानी अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। माँ कहने लगी वो कौन सा देख रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहने लगी अल्लाह तो देख रहा है। यानी ये होता है ना खौफे खुदा, कि जब इंसान के अंदर आ जाता है तब वो एकदम बात करते हुए, कोई एक्शन करते हुए, कुछ कुछ भी जो अमल है ना जो बुराई का है, वो करते हुए एकदम रुक क्यों जाता है? इसलिए कि खौफे खुदा आता है, इसलिए नहीं कि जन्नत मिलती है। अक्सर ऐसा आप अपने आप पे भी रख के देख लें, अक्सर ये नहीं ख्याल आता कि हाँ अच्छा ये करूंगी तो जन्नत मिल जाएगी, अक्सर एकदम डर आता है कि हे अल्लाह के आगे जवाब देना होगा, अगर मैं ये करूंगी तो क्या होगा, ऐसा ही है ना। देखिए ये खौफे खुदा की बरकत थी कि वो लड़की जो थी, इसका रिश्ता फिर हजरत उमर ने अपने बेटे के साथ किया, और इस लड़की की औलाद से उलमा कहते हैं कि 70 नेक आदमी पैदा हुए थे जिन्होंने अपनी अपने इलाकों में तब्दीली लेकर आए और वहां पे लोगों को मुतासिर किया। और इन्हीं में फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको उम्र सानी भी कहते हैं, वो इन्हीं की औलाद से हुए थे। सुबहान अल्लाह, फिर खौफे खुदा जब होता है ना, तो आगे देखे औलादों में भी कैसे चलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या बना के भेजा? नजीर और बशीर। हालांकि आपकी फिर दावत के अंदर आप देखें गालिब गालिब जो है ना पहलू, वो बशारत का है, लेकिन स्टार्ट नजीर से हुआ है। वह अनिस्तगफिरु रब्बकुम, और ये मैं तुम्हारे लिए ये कहने के लिए आया हूं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नजीर और बशीर बना के अंजार करने वाला और बशारत देने वाला हूं मैं अल्लाह की तरफ से, और मैं ये तुम्हें कहने के लिए आया हूं कि तुम अपने रब से इस्तिगफार करो। इस्तिगफार का मतलब क्या होता है कि बख्शिश मांगो अपने अल्लाह से, और ये सिर्फ रब्बे गफिर ली अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहां करना नहीं है, बल्कि वाकई इंसान निदामत, इसके दिल के अंदर निदामत का एक पहलू हो कि इंसान ये सोचे कि मैंने जो अमल किया है ये सही नहीं, मैंने ये बुरा कर दिया। अगर निदामत नहीं है ना, तो फिर कोई तौबा भी नहीं है। अब यहाँ पे अस्तग़फिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू भी है, सुम्मा तूबू इलैही, तो दो अलग अलग चीजें आई हैं। यानी अल्लाह ताला के आगे इस्तिगफार भी करो, दिल से करो, और तूबू भी है, उसकी तरफ पलट भी जाओ। ये नहीं कि वो ही जिंदगी गुजारते जाओ, फिर अल्लाह की तरफ पलटो। तो अल्लाह ताला की तरफ पलटना जरूरी है, अपना वो ट्रैक छोड़ना जरूरी है जिस पर चल रहे थे। देखिए उलमा कहते हैं कि सबसे ज्यादा कुरान की जो उम्मीद दिलाने वाली आयत है ना, वो कौन सी है? आप बताएं, जिन्होंने दो दो कोर्सेस कर लिए हैं वो बताएं। सबसे ज्यादा कुरान पाक की उम्मीद दिलाने वाली है, जिसमें होप है, वो है 24वें पारे में सूरह जुमर में, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ये है, यानी जब इंसान इस्तगफार करे, अल्लाह की तरफ पलटे, तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह माफ करने वाला है और अल्लाह ताला माफ कर देगा, मैं अल्लाह के सामने झुकती हूं, मैं अल्लाह के सामने अपना मामला रखती हूँ, जो बड़ा ही गफूर रहीम है। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक वो सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देने वाला है। तो इसलिए इस्तिगफार करो, क्योंकि इस्तिगफार करना जो है ना, यानी अब इंसान इस्तिगफार करने का मतलब ये हो गया कि इंसान अब पिछली जिंदगी छोड़ के एक चेंज्ड लाइफ में आ गया, अल्लाह की फरमाबरदारी में आ गया। इंसान ने वो सारे तरीके छोड़ दिए जो पहले करता था, वो पलट आया, वो ढीठ होके वही काम नहीं करता चला जा रहा, वो गलत रास्ते कोई नहीं अपनाए हुए, बल्कि वो पलट आता है। और देखें जितनी जल्दी जिंदगी में इंसान अल्लाह की तरफ पलट आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी दूर निकल जाए ना गलत रास्ते पे, मुड़ के आना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आप देख लें, आप कहीं भी रास्ता लें, अगर आप रास्ता भूल गए या रास्ता गलत आपने कहीं ले लिया, कोई एग्जिट गलत ले लिया, तो कितनी ही दूर चले जाएं, जितनी दूर जाते जाएंगे सीधे रास्ते से उतनी ही दूर होते जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये तौबा का दरवाजा खोला हुआ है, वैसे तो इंसान के मरने तक ये दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन जितनी जल्दी वो पलट आएगा उतना ही उसके लिए आसान होगा पलटना, वरना जितनी देर करेगा वो उस रास्ते पे ही चलते चलते उसका ही आदी हो जाएगा, फिर पलटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जहां गलती हो ना, फौरन कोशिश किया करें, गलती हो गई है अच्छा चलो अब तो हो ही गई है, अब तो हो ही चुका है, तो अब यही करते रहते हैं, नहीं उसी वक्त कहें, चाहे 10 साल से कर रहे हैं वही काम, 20 साल हो गए हैं सारा वक्त से यही गलतियां करते जा रहे, कभी भी देर नहीं हुई, आज रियलाइज हो गया, आज माफी मांग ले, माफी मांगने में देर ना किया कर। तो जब तुम पलट होगे ना अल्लाह की तरफ और तुम तौबा कर लोगे उसकी तरफ, युमत्तिअकुम मतअन हसना, तो वो तुम्हें फायदा देगा, फायदा अच्छा। अब हम सोचते हैं कौन सा फायदा, कौन सा फायदा, दुनिया का या आखरत का? लेकिन यहां पे पता चलता है दुनिया का, इसलिए क्योंकि आगे क्या है, इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक। आखरत का फायदा तो हमेशा का है, वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं। हाँ, दुनिया का फायदा वो है जो अजल मुसम्मा होता है, जो एक वक्ते मुकर्रर तक है, उसके बाद इंसान खत्म हो जाता है। तो ये कौन सा फायदा है, यानी दुनिया में भी अल्लाह ताला अच्छी उसको जिंदगी देगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको ऐसी लाइफ देगा जो पुरसकून होगी। आप देखते हैं जो अल्लाह ताला के हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी, जैसे हजरत इमाम तैमिया, इमाम गुजरे इमाम इब्ने तैमिया, जब उनको कैद कर दिया गया तो उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता, इसलिए कि मेरी जन्नत तो मेरे साथ है, अगर तुम मुझे, मेरा मेरे दुश्मन क्या कर सकते, अगर वो मुझे कैद में नहीं डालते, मुझे जिला वतन कर देती हैं, तो मैं अल्लाह की कायनात देखूंगा, सैर व सियाहत करूंगा, अल्लाह ताला की दुनिया में घूमूंगा, उसकी निशानियों को देखूंगा। अगर वो मुझे खत्म कर देती हैं तो भी क्या है, मेरे लिए शहादत है। अगर वो मुझे कैद में डालती हैं तो भी क्या है, मुझे तन्हाई मिलेगी और मैं अल्लाह से लो लगाऊंगा। तो यानी मोमिन का मामला हर जगह ही बड़ा जबरदस्त है। तो उसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पिछले गुनाहों की इस्तगफार कर लो, आइंदा के लिए अजम कर लो कि मैंने नहीं करना, गलत नहीं करना। तो बाज लोग सोचते हैं हमें सिर्फ आखरत में कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं, यहां से पता चला दुनिया में भी अल्लाह अच्छी जिंदगी देगा। ठीक है, लनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह ताला ने फरमाया हम उनको जरूर पाकीजा जिंदगी देंगे। तो आखरत में तो मिलेगा ही अच्छा, आखरत में तो उसके लिए बहुत भलाइयां हैं ही, लेकिन यहां पे मुराद है दुनिया की जिंदगी। अल्लाह तुम्हें आफतों से बचा के रखेगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें एक पुरसकून जिंदगी देगा और एक वक्ते मुकर्रर तक लाइफ देगा, यानी कोई अजाब आके इंसान को नहीं खत्म किया जाएगा, जब वो इस्तगफार कर लेता है, अजाबों से बच जाता है। तो मताए हसन, हर एक इंसान चाहता है कि ये इस दुनिया की जिंदगी भी मेरी अच्छी हो जाए, लेकिन ये तभी मिल सकती है जब वो इस्तगफार करके अल्लाह की तरफ तौबा करता है। हम क्या सोचते हैं कि हाँ, अगर हम तौबा करके अपनी जिंदगी बदल के अल्लाह की तरफ आ गए तो हमारी यहाँ की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम कैसे जिएंगे। हम कहते हैं ना कि यहाँ भी तो रहना है ना, तो ये गलत कर लो, वो गलत कर लो, वो गुनाह कर लो, क्योंकि आखिर जीना है ना यहाँ पे। हालांकि बिल्कुल आयत में उलट कहा जा रहा है, आप खुद देख लें आपके सामने आयत, या ये कहा जा रहा है कि हाँ आपने दुनिया में तो जीना ही है, क्या करें, मजबूरियां हैं, तो इसलिए सारे गलत काम करते जाओ, जो लोग कह रहे हैं, जिस तरह से लोग आपको चाह रहे हैं कि आप चलें वैसे चलते जाओ। नहीं, आपको अगर मतान हसना चाहिए ना, अच्छी जिंदगी चाहिए, इस जिंदगी में भी भलाई चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इस्तगफार करनी पड़ेगी, फिर तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह की तरफ पलटना पड़ेगा, तब अल्लाह ताला दुनियावी नेमतें भी देता है। आखरत में तो है ही, दुनिया की नेमतें भी मिलती हैं। जैसे हजरत हसन बसरी के पास एक आदमी आता, उसने शिकायत की कि मेरे खेत जो हैं वो सूख गए हैं, फरमाया इस्तगफार करो। दूसरा आया, उसने कहा मेरी औलाद नहीं है, फरमाया इस्तगफार करो। तीसरा कोई आया, उसने भी कोई अपनी रिस्क की तंगी की शिकायत करी, फरमाया इस्तगफार करो। तो लोगों ने पूछा अब हर एक को इस्तगफार का ही कहते जा रहे, तो किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है? तो फरमाया तुम कुरान पढ़ो, उसमें ये आयात है इस्तिगफार के लिए। सूरह नूह में आप देखिए 11, 12, 13 आयात क्या है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान से भी बारिश बरसाएगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा मालों से भी बेटों से भी, और तुम्हारे लिए बागात और नहरें भी अता फरमाएगा। तो ये दुनिया की जिंदगी की चीजें हैं ना, तो इसका मतलब दुनिया में भी इंसान को सहूलतें मिलेंगी, रिस्क की वसत मिलेगी, सब मिलता है इस्तेफार करने से। अब ये ना हो कि आप इस्तेफार की तस्बीहां शुरू कर दें या आप आयत करीमा शुरू कर दें, वो भी तो इस्तेफार ही है ना, तो वो आयत करीमा को 1,25,000 शुरू कर दें, इससे मसले हल होंगे। मसले हल होते हैं इस्तेफार से ही होते हैं, और यहाँ पे यही कहा जा रहा है। लेकिन वो वाली इस्तेफार नहीं जो आपकी गुठलियां लेके बैठ गए और दुनिया को इन्वाइट कर लिया, अब आप खाने पीने बनाने शुरू कर दें और लोग बैठे आयत करीमा पढ़ते जाए, ये किस किस्म की इस्तेफार है? ये किस तरह की इस्तेफार है कि वो अपने लिए इस्तेफार, उनको भी मसला ये है कि बस अब इसने बुला लिया, अब हम भी जल्दी जल्दी खत्म हो और हमारी जान छूटे, ये कैसी इस्तेफार हो रही? कि किस तरह की निदामत है? जब तक निदामत नहीं है तब तक इस्तेफार भी नहीं है, जब तक आपको शर्म नहीं है इसमें कि मैंने क्या किया। और फिर अल्लाह ताला और क्या देगा, युती कुल्लदी फदल फतलहू, और अल्लाह ताला देगा हर फजल वाले को उसका फजल, यानी फजल से मुराद क्या होता है, एक्स्ट्रा। एक होता है ना कि आप आपकी उजरत होती है, एक जिसको आप टिप कहते हैं दुनिया में या बोनस कहते हैं दुनिया में, वो फजल होता है, अपना फजल अता करेगा और ये उससे जायद है। जैसे हमें पहले हमने आवाज ज्यादा कभी पढ़ा था कि अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएगा जन्नत वालों को, ये उसका फजल है। तो अल्लाह ताला जो इंसान करेगा उससे एक्स्ट्रा देगा, और वो कैसे कि जैसे कोई इंसान भी नेकी करता है तो क्या उसको एक ही उसका अजर मिलता है? नहीं, 10 गुना करके उसको अजर दिया जाता है, ये अल्लाह का फजल है। और बुराई का वो भी क्या 10 गुना की जाती है? नहीं, वो एक ही लिखी जाती है। इसलिए ये अल्लाह ताला फिर हर फजल वाले को अपना फजल देगा, और उसका फजल देगा ये भी हो सकता है, अल्लाह की तरफ भी जा सकता है, फजला हु अल्लाह का फजल, और उसका फजल यानी जितना वो उसका मेरिट था, जितना वो डिजर्व करता था, उससे ज्यादा अल्लाह ताला फजल उसको देगा उसका उस अमल का। वह इन, और अगर तवल्लो तुम मुंह फेरोगे, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कहलवाया जा रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ नजीर बशीर बना के भेजाऊंगा, उन लोगों तुम तौबा इस्तगफार करो, लोगों तुम्हें अल्लाह ताला इस दुनिया में भी भलाई जिंदगी देगा, अगर तुम इस्तगफार करोगे अल्लाह ताला अपने फजल से तुम्हें और भी नवाजेगा, और अगर तुम नहीं फिर भी मानते, टर्न अवे करते हो, तो मुझे डर लगता है तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से। बड़ा दिन कौन सा है? यौम इन कबीर इन, यौम कबीर भी हमें एक और नाम पता चला कयामत के दिन का, ठीक है, कयामत के दिन के बहुत सारे नाम है, यौमुल हसरा है, यौम तगाबुन है, यौमुल कियामा है, यौम इन यौम कबीर भी है, यानी बड़ा दिन। किस लिहाज से बड़ा है? इसलिए कि भारी है वो और लंबा भी है वो। तो जैसे हम कहते हैं ना बहुत बड़ी बात है ये, तो मतलब क्या होता है? मतलब ये नहीं कि लेंथ में और विड्थ में कोई बड़ी है, कोई बहुत अजीम दिन है वो। अल्लाह अकबर। तो अगर तुम नहीं फिर भी इस्तिग़फ़ार की तरफ आते, ना तुम डरते हो, ना तुम्हारे अंदर कोई खौफे खुदा है, ना तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होने की कोई फिक्र है, तो मैं तो तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से डरता हूं कि उस दिन तुम्हें अजाब ना खींच ले, तुम ना नुकसान ना कर बैठो। क्योंकि इस्तिग़फ़ार करना, याद रखें, हमारी चॉइस नहीं है, हमारी जरूरत है। चॉइस नहीं है, समझ आ रही बात आपको? चॉइस तो भी ठीक है, आप करें नहीं करें, करेंगे तो भला है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। चॉइस नहीं है, ये जरूरत है, इसके बगैर चारा नहीं है। इसलिए कि जो इंसान चाहता है कि कयामत के दिन अपने आमाल नामे को देख के वो खुश हो, ये हदीस में आता है, जो चाहता है ना कि इसका उसका आमाल नामा उसको खुश कर दे, उसको चाहिए कि कसरत से तौबा इस्तगफार करे, कसरत से तौबा करें, दिन में उठते बैठते तौबा करते रहें, अल्लाह मुझे माफ कर दे। चले आपको नहीं, कोई लफ्ज भी नहीं ना आता, कोई मसला नहीं, आपके अंदर बस ये अगर होता रहता है ना, हर एक कसक रहती है आपके अंदर कि अल्लाह मैं नहीं उस तरह से कर सकी जैसे तेरा हक है, अल्लाह मैं नहीं तुझे राजी कर सकी जैसे राजी करना चाहिए था, अल्लाह मुझसे वैसे नहीं हो पा रहा जैसे होना चाहिए, अल्लाह मेरे से कितनी कमियां हो रही हैं, अल्लाह मेरे से कितने गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह मेरी कितनी खताएं हैं, इनके साथ मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊंगी। जब जब बैठे, जब उठे, जब लेटे, ये ख्याल दिल में आए और फौरन इंसान तौबा करने लगे, यही मतलूब है एक इंसान से। और ये मतलब इसका हरगिज नहीं है क्या आप बस एक तस्बीह मैं जी सुबह को इस्तगफार की कर लेती हूँ, एक तस्बीह सुबहान अल्लाह की कर लेती हूँ, एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आप बड़े बड़ी अच्छी बात है आप तस्बीह करती हैं इस्तगफार की, लेकिन इस्तगफार में अगर वो बात ही नहीं है, आपका दिल ही नहीं है, आपके दिल में ये रिमोर्स ही नहीं है, ये निदामत नहीं है, पछतावा नहीं है, या आप फील ही नहीं करते, फीलिंग है ही नहीं है कोई उसमें, कोई इसमें जज्बा नहीं है, वो कौन सी इस्तगफार है? अगर ये आप महसूस नहीं कर पा रहे कि मैं नहीं करती वो, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर भी रही हूं लेकिन उतना नहीं हो पा रहा, तब वो जो आंसू आएंगे और तब वो जो आपके दिल से इस्तगफार निकलेगी ना, वो है जो अल्लाह तला के यहां मकबूल, वो है कि तब दुनिया का भी अच्छा फायदा और अल्लाह तला और भी अपने फजल से अता फरमाएगा, ठीक है। तो इसको एक फॉर्मूला समझ के या एक टाइम स्टेबल पहाड़ा समझ के याद ना करें कि आपका दिल इसके अंदर, ये दिल में ये कसक हो, ये दिल हार्ट शुड बी एकिंग, दर्द हो इसके अंदर, क्यों नहीं मुझसे होता और नहीं हो पा रहा, और गुनाह है कि वो बढ़ते ही जा रहे, इस गठरी को मैं कैसे उठाऊंगी। ये जिस दिन आया ना अंदर, तब फिर ये है कि ये तौबा है, ये फिर पलटाती भी है, वरना सिर्फ मुंह की बातें हैं, जुबान की हरकत है और कुछ भी नहीं। तो इस एहसास के लिए बार बार अल्लाह ताला की तरफ ध्यान जाना चाहिए और बार बार इस चीज का एहसास रहना चाहिए। दिन भर में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा तौबा करते हैं और हर मजलिसों में सहाबा फरमाते थे हम आपसे इतनी इतनी दफा गिन लेते थे कि इतनी दफा कर रहे हैं, तो हमारी तो दिन में कितनी दफा होनी चाहिए, 100 ना सही, कुछ 10 दफा ही सोचे कि हम इस तरह से हम अपने दिल में एहसास लेके आए। लेकिन ये उसी के लिए होगा जिसका सोच और ताना बाना वहां आखिरत के साथ जुड़ा होगा, कि जो ही वो बैठेगा या जो ही वो तनहा किसी वक्त भी होगा, उसकी सोच वहीं चली जाती होगी, वरना कैसे इस्तेफार होगी। इलल्लाही मर्जिउकुम, सुन लो लोगो, तो मुंह फेर लो, अल्लाह ताला को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या करोगे बताओ, तुम्हें तो एक दिन लौटना उसकी तरफ ही है, जाओगे कहां, फिरू इल्लाह, तो अल्लाह की तरफ भाग के आ जाओ ना। अभी दुनिया में हमारे पास खुद चॉइस है कि हम अल्लाह की तरफ आए या नहीं आए, अल्लाह ने चॉइस खुद दी भी है, इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, तुम चाहे शुक्रगुजार बनो चाहे ना शुक्र बन जाओ, अल्लाह ने चॉइस दी है तुम्हें, चाहे फरमाबरदारी करो चाहे ना फरमान बन जाओ, अल्लाह तआला ने तुम्हें खुली छुट्टी दी है यहाँ पे, लेकिन याद रखो ये खुली छुट्टी हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन वापस जाना है कहाँ जहां से आए हैं। मौत का तो हर एक को यकीन है, काफिर भी कहता है मरना, जाहिर अपने सामने देखते लोगों मरते हुए वो भी कहता है मरना, दहरिया भी कहता है मरना है, सब कहते हैं। लेकिन जिस चीज में उनको ईमान नहीं है और हमारा है, वो ये है इलाल्लाह ही मर्जी हुकुम। देखें मर्जी हुकुम इलाल्लाह भी ठीक जुमला था, लेकिन यहां पे क्या है इलाल्लाह ही मर्जी हुकुम। जब इलाल्लाह आया ना, अल्लाह ही की तरफ लौटना है तुम्हारा, ये माना फिर बन जाता है। मर्जी को मिला अल्लाह का मतलब अल्लाह की तरफ तुम्हें जाना। अब जब सिर्फ अल्लाह ही की तरफ पलटना है और कहीं नहीं जाना, ये नहीं कि क्रिश्चियन कहीं और चले जाए, यहूदी कहीं और चले जाए, एथीस्ट कहीं चला जाए, मुसलमान अल्लाह की तरफ जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं है। सबको तुम्हें उस अल्लाह ही की तरफ पलटना है, एक ही है जगह जहां पे सबको पहुंचना। तो फिर तुम्हारे पास चॉइस क्या है? फिर कहां भागे जाते हो? फिर कहां मुड़ मुड़ के फिरते हो? फिर अल्लाह से किधर फरार हासिल कर सकते हो? वापस तो उसके पास ही जाना। वाला कुल्ली शैइन कदीर। कोई ये ना समझे ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता, कहां कौन जो मरेगा, कहां मरने वाले, किधर किधर चले गए, कब कब मर गए, कौन पहुंचेगा, सारी बातें हैं, कौन जिंदा करता फिरेगा, नहीं। वह हुआ आला कुल्ली शहीन कदीर, वो तो हर चीज पर कादिर, तुम्हें भी पलटा के ले आएगा अपने सामने। देखिए ये नमाज हमें हर रोज याद दिलाती है इसी बात की के जैसे आज हाथ बांधे यहां पे खड़े हैं ना, इसी तरह एक दिन हशर के मैदान में खड़े होंगे, इसी तरह अल्लाह सामने होगा। एक तरफ गुनाह होंगे, एक तरफ नेकियां होंगी, एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नम होगी, और इंसान खड़ा होगा। फिर किधर फरार करोगे? अभी तो भाग जाते हो ना, अभी तो कहते हो नहीं सुनना, नहीं मानना, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समझते हो कि आजाद हो, मेरे पास चॉइस है, नहीं मानूंगी को क्या फर्क पड़ेगा, कौन मुझे पूछ सकता है, कुछ नहीं होता, सब करते हैं। उस दिन क्या करोगे जब अल्लाह के आगे खड़े होगे, सामने अल्लाह और इधर आप, फिर क्या करोगे? अला इन्नहुम यथनून सुदूरहुम, खबरदार बेशक वो मोड़ते हैं अपने सीने, लियस्तख्फू मिन, ताकि वो छुप सके उससे, वो अपने सीनों को मोड़ते हैं कि वो उससे छुप सके। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे ना, दावत देते थे, यही नूह अलैहि सलाम के साथ भी होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ, कि लोग जो थे वो देख लेते थे कि आ रहे हैं, अब वो छुपने की कोशिश करते थे कि अब आके हमें कोई नसीहत करेंगे, ये बातें बताएंगे, तो अपने आप को मोड़ते थे सीने ताकि छुप सके। अल्लाह खबरदार, ही ना यस्तौशूना सियाबहुम, जिस वक्त वो ढांपते हैं अपने कपड़ों को, यानी अपने जैसे इंसान कपड़ा नहीं ऊपर ले लेता कि मुझे देख ही ना ले, वो इधर को मुंह भी कर लिया और साथ अपनी चादर भी आगे ऐसे करके छुपा दिया अपने आप को, कि इसको पता ही ना चले मेरा, कहीं इधर ही ना आ जाए, कहीं हमें ही ना बताने लगे। तो जब तुम ऐसे कर रहे होते हो ना, जब वो ऐसे करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया यालमु मा युसिरुना व मा युअलिनुन, अल्लाह तो जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं, इन्ना वालीमुम बिजात सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तो सीनों के अंदर की बातों को भी जानने वाला है। और देखिए ये इंसानों का हमेशा से तरीका रहा है, आज तक ऐसे होता है, आज भी देखें आप कहीं जा रहे हैं, लोगों ने देख लिया कि ये तो कोई है जो कि मसलन कोई टीचर है या कोई आलिम है या कोई कोई स्कॉलर है, तो लोग क्या करते हैं इधर उधर हो जाओ, या तो कहीं से प्रिटेंड करो कि मैंने देखा ही नहीं, या बस ऐसे मुंह सा इधर करके छुपा सा लो कि उनको पता ही ना चले मेरा, कहीं इधर ही आके ना नसीहतें शुरू कर दें, कहीं पूछ ही ना ले कुछ, क्लास लेती हो या नहीं, कहीं कहीं कोई और ही ना बात करने लगे, कहीं मेरा हाल हुलिया ही ना देख ले, बस यहाँ पे आपको किसी तरह छुपा लूं। तो आज भी लोग ऐसे करते हैं, बाज दफा लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह की बातें की जाएं, तो उनको ये भी बुरा लगता है कि इधर आ जाएंगे तो बस वो अपने शुरू हो जाएंगे, मतलब मैं ये बातें सुनूं। तो यानी इंसान जो है ना, फिर ना वो उसका दिल उकताया हुआ होता है इन चीजों से, वो सुनना नहीं चाहता अल्लाह की बात को, इसलिए अपने आप को छुपाते हैं। तो ऐसे भी लोग थे मक्का में, ये भी इग्नोर करने का तरीका होता है, और आज तक ऐसे लोग चल रहे हैं। बास लोग दर्स वगैरह पे भी ऐसे होते हैं, या आप किसी मजलिस में ही उनके साथ बैठे हो, आप अल्लाह का जो ही जिक्र कोई बात शुरू करेंगे, वो बच्चों से बात करना शुरू कर देंगे, जैसे कि वो उन्होंने बिल्कुल आपकी बात को इग्नोर किया, या वो अपना फोन पे कुछ देखना शुरू कर देंगे, या वो उठ के चले जाएंगे उधर, अच्छा मैं जरा देख के आती हूँ, क्योंकि बस उन्होंने इग्नोर करना है ना इन बातों को, वो सुनना नहीं चाहते। इसी तरह बाज जगह मैं तो क्यों दर्श देती हूँ, मुझे पता है बाज जगह ऐसे होती है, ऐसी मजलिस होती है खासतौर पर ये शादियां वगैरह की, जब लोगों ने आज फैशन बना लिया कि ये भी एक दर्श रखना जरूरी है, कि भाई शादी का दर्श एक होना चाहिए, ये भी एक रस्म हो गई, पहले और रस्में होती थी, अब ये भी एक रस्म है, वो एक रस्म है कि भाई दर्श करना है आपने। वहां पे लोगों का कोई मूड होता है अल्लाह की बात सुनने का, उनका नाचने का मूड है, म्यूजिक का मूड है, गानों का मूड है, वो कोई इस मूड से बैठे हुए कि अल्लाह की बात सुने, तो ऐसे लगता है जैसे इनको जबरदस्ती किसी ने बांध के बिठाया हुआ, और वो कह रहे हैं कब इनकी बातें खत्म हो और हमारी जान छूटे, क्योंकि उनको तो बुलाया हुआ है कि आज मेहंदी की रात है, या आज वो गाने की रात है, या जो जो भी है, तो आप आ जाए, और बीच में आपने किसी को दर्श के लिए शुरू कर दी। ये जो चीज है ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जानता है किसके दिल में सुनने की तड़प है अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की बात को, अल्लाह ये भी जानता है तुम जाहिर क्या कर रहे हो, तुम जाहिर तो ये कर रहे हो कि तुम बैठे हुए हो यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा दिल कितना उकताया हुआ है, तुम्हारा दिल कितना घबरा रहा है, और तुम्हें कितनी ये जल्दी है कि खत्म होना ये बातें, ये अल्लाह जानता है। आपकी कोई अल्लाह की बात सुना रहा है, उसके ऊपर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये क्यों सुना रहा है। हाँ, लेकिन हम उतनी देर में कोई और बातें करें तो सबको बड़ी अच्छी लगेंगी, कोई फैशन की कर लें, कोई ये डिजाइनिंग की कर लें, कोई प्रॉफिट बनाने की बातें कर लें, किसी इन्वेस्टमेंट की कर लें, घर सजाने की बातें कर लें, बहुत अच्छी लगेंगी। तो अल्लाह ताला क्या नहीं जानता, वो जो सीनों के अंदर के भेद भी जानता है, क्या उसको नहीं पता किसको कितना शौक है, कौन कितनी तड़प रखता है अपने अंदर, कौन है उकताया हुआ है, कौन सिर्फ खाने पीने के लिए आया है, कौन सिर्फ गपशप के लिए आया है, कौन सिर्फ फन के लिए आया हुआ। तो फिर अगर ऐसे लोग हैं तो फिर तो जाहिर ही बात है, उनको बात सुनानी या ना सुनानी एक बराबर है, वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकल रही है। तो इसलिए ये अगर किसी के सामने ऐसा होता है तो इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तो पैगंबरों के साथ ऐसा हुआ, लोग छुप जाते थे, लोग बात सुनने से कतराते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह तो सीनों के अंदर की बातों को भी जानता है, ये क्या सोचते हैं कि ये जो सोच रहे हैं अल्लाह को नहीं पता, इनको कितनी इस चीज की लगन लगी हुई, अल्लाह को नहीं पता क्या, वो तो वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाही रिस्कुहा, वो तो पहुंचाता है हर जानदार को उसका रिस्क, उसने अपने जिम्मे लिया हुआ है। और इसका पिछली बात से क्या ताल्लुक है, कि जिसको इल्म होगा ना कि कहां कोई जानदार है, वो ही उसको रिस्क पहुंचा सकता है ना। अगर किसी को पता ही नहीं कि एक कीड़ा जो है वो पत्थर के नीचे कहीं दबा पड़ा, जमीन के अंदर भी रींगने वाली चीजें हैं, कितनी समंदर की तहों में भी, जहां पे इतनी डार्कनेस है, वहां पे कहते हैं वो मछलियों की आंखें ही नहीं है, इतना डार्क है वहां पर भी जिसको पता होगा कि मेरी मखलूक यहां है, वो ही उसको रिस्क पहुंचा सकता है ना। उसका इल्म तो यहां तक मुहित है कि वो हर जानदार को उसका रिस्क पहुंचा रहा है, ना सिर्फ पहुंचा रहा है, उसने अपने जिम्मे लिया हुआ है, यानी उसने अपनी जिम्मेदारी ये ली हुई है कि ये मैंने रिस्क पहुंचाना है इसको। अच्छा, ये बात तो मैंने उससे आपको बता दी, जो पिछली बात चल रही थी, एक और माना जो है, ये जो पिछली आयत है इसका एक और माना भी है जो बुखारी में है, और इसी आयत के शान नजूल के बारे में इब्ने अब्बास ने फरमाया, तो वो भी मैं आपको मेंशन कर लेती हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो गुसल करते वक्त या रफा हाजत करते वक्त भी ना अल्लाह ताला से शर्म महसूस करते थे कि हम अपने सतर को खोलें, तो वो इस वजह से अपने सीनों को दोहरा कर लेते थे, जैसे बच्चे नहीं आप देखते कि कभी नंगे हो तो वो ऐसे अपनी अपनी दोनों कंधों को ऐसे मोड़ से लेते हैं ताकि अपने आप को छुपाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से तो नहीं छुप सकते, बेलिबास होके भी अल्लाह से नहीं छुप सकते। तो वो ये सोचते थे कि कोई मौका ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के सामने भी बेलिबास हो जाएं। बाज लोगों में हया बहुत ज्यादा होती है ना, तो कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला से तो कहीं पे भी नहीं छुप सकते, अल्लाह ताला तो उनको हर हालत में देखता है और हर उनकी बात को जो सीनों के अंदर छुपी हुई उस तक को जानता है, तो कपड़ा पहनने या उतारने से अल्लाह ताला के सामने कोई छुपाया अपने आप को नहीं जा सकता। लिहाजा शर्म की भी हुदूद देखिए वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। बाज़ हमारे कल्चर्स में ये होता है कि हम नहाते वक्त भी वो कहते नहीं अपने आप को नंगा नहीं करना, तो ये भी एक मुबालगा है ना, एग्जैजुरेशन ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खामखा का एक गुलव है। तो इसलिए जब आप चार दीवारी में हो बिल्कुल तन्हा है तो इंसान नहा रहा है या रफाए हाजत के लिए है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, लेकिन वैसे अपने आप को बिल्कुल नंगा करके घूमते रहना कि मैं तो घर में अकेली हूं तो मैं गर्मी बहुत है तो नंगा करके घूम रहे हैं, या मर्द कोई घूम रहा है कि कौन सा हमें कोई देख रहा है, तो फिर ये हया करनी चाहिए कि आपके साथ फरिश्ते भी तो हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट आयत में पता चला कि कोई दाबा कोई जानदार जमीन में ऐसा नहीं है मगर अल्लाह ताला के जिम्मे उसका रिस्क है। क्यों अल्लाह के जिम्मे क्यों है? हाँ इसलिए कि अल्लाह ताला रब है, रब वही जात होती है जो मालिक भी होता है और वो अपनी चीज को बढ़ोतरी भी देता है, जिसको कहते हैं नशो नुमा देने वाला, उसको बढ़ावा भी देता है, और उसको बढ़ाने का हर स्टेज जो है उसकी जिंदगी की हर स्टेज को जो भी जरूरियात उसके साथ लगी हुई है जो भी उसके तकाजे हैं उसकी हयात के उनको भी पूरा करता है, और रिस्क भी उनमें से एक चीज है, और रिस्क में से आपको पता है हर चीज ही आ जाती है, जो भी प्रोविजंस है जो भी उसकी जिंदगी के लिए उसको जरूरियात है अल्लाह ताला उसको उसकी पूरी करता है। अल्लाह ताला तुमसे रिस्क नहीं मांगता, वो तो तुम्हें रिस्क अता करता है, और आप इससे देख लें कि कहाँ कहाँ अल्लाह की मखलूक है। हम इवन आप पौधे देख लें, कई दरख्त इतने पहाड़ों पहाड़ उनसे लदे होते हैं, अब वहां तक उनको कौन पानी पहुंचाता है, वहां कौन जाके उनको कुछ देता है, यानी वो ऐसे ही खड़े में किसी ने भी नहीं आज तक उनको पानी डाला होगा, कौन उनको पिला रहा है ये पानी, अल्लाह ताला उनका भी रिस्क देने वाला है। इसी तरह कोई रींगने वाला कीड़ा हो या कोई मछली हो, इवन वेल मछली के बारे में आता है कि उसकी एक दिन की जो डाइट है ना, एक दिन का फूड 28 टन्स का है, टन टन, तो टन कितना ज्यादा होता है, हम 1 केजी भी नहीं खा सकते, तो टन तो बहुत है, तो एक दिन की ये उसकी खुराक है, यानी कितने लोग मिल भी जाएं तो फिर भी उसके एक दिन का खाना बना के उसको देना मुश्किल हो जाए, उसको पालना मुश्किल हो जाए, रब वो है जिसको। हाँ रब का माना, हाँ ये मुझे याद आया कि मैंने आपको पहले भी बताया रब का माना पालने वाला, तो पालने के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है ना, चाहे वो खाना है पीना है ऑक्सीजन की सूरत में है या उसके सर्वाइवल के लिए उसको सर्दी गर्मी का राइट टेम्परेचर की भी जरूरत है वो है, या जो भी उसकी जरूरियात है सर्वाइवल के लिए वो सारी प्रोवाइड करने वाला। अब देखें ये पतंगे हैं तितलियां हैं फिर बर्ड्स हैं, इन सारों को कोई मैं और आप तो नहीं दाना डालते, हम तो किसी को डाल भी देते तो हम सोचते पता नहीं हम ही इसको पालने वाले हैं, तो ये कहाँ जानवर चर चुग रहे हैं, या ये कहाँ फिर हर एक की खुराक किधर है, जंगलों में कितने जानवर हैं, समुद्रों में कितने जानवर हैं, सहराओं में कितने हैं, जमीन के नीचे कितने हैं, फिजाओं में कितने हैं, सब का रिस्क अल्लाह ही देने वाला है। लेकिन इंसान देखो, ये इंसान कितना भोला है ना, वो देखता सबको अल्लाह रिस्क दे रहा है, मुझे नहीं देगा। वो अपने रिस्क के लिए डरता है कि पता नहीं हाय हराम रास्ते इख्तियार कर लूं, क्योंकि पता नहीं वो फिर इस तरह तो कमाऊंगा क्या, तो खाऊंगा क्या। वो जो सांप को खिला रहा है, पिला रहा है, वो तुझे ना खिलाएगा। वो जिसने माँ के पेट में भी तुझे खिलाया, वो अब माँ के पेट से बाहर आके ताकतवर हो गया तब ना खिलाएगा। सुभान अल्लाह। तो कोई जानदार वह माँ मिन दाबतिन कह के ना, हर एक को कह दिया गया कि कोई जानदार ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला, मगर अल्लाह के जिम्मे उसका रिस्क है। इसमें सबको इसमें शामिल कर दिया गया, हर जानदार इसमें आ गया, हर एक का रिस्क अल्लाह ही के जिम्मे है। कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसका ना हो, जिसका कोई और दे रहा हो रिस्क। और फिर भी इंसान इतने दीवाने हैं कि अपना रिस्क मांगने के लिए कहते हैं हाय रिस्क की बड़ी मुश्किलात हो रही है, फलां जगह पे जाओ, वहां पे जाके धागे बांधो और उनको उनके आगे फरियादे करो तो फिर आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के मसले है, कारोबार नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, तो वहां पे जाके मिलेगा। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब जानदारों को भी रिस्क अल्लाह ही देता है, तुम्हें रिस्क देना क्या उसको मुश्किल है। और दाबा में मैंने आपको बताया ना, सारी आ गए। अल्लाह हू अकबर। अच्छा, अब फरमाया वा यालमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौदाहा, उसका मुस्तकर भी अल्लाह ही के जिम्मे है और उसका मुस्तौदा भी जिम्मे नहीं इल्म में है। उसका मुस्तकर भी अल्लाह के इल्म में और उसका मुस्तौदा, मुस्तकर और मुस्तौदा में क्या फर्क है। मुस्तकर करार की जगह, उस जगह को कहा जाता है जो इंसान की मुस्तकिल तौर पे ना, जैसे कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस जिसको हम कह देंगे ना, तो वो मुस्तकर है। और मुस्तौदा जहां पे इंसान टेम्पररी तौर पर ठहरे, विदा से जैसे आप कह लेना, टेम्पररी तौर पे ठहरे, अल्लाह को उसका मुस्तकर भी पता है और मुस्तौदा भी पता है। तो यानी इंसान पैदा जब नहीं भी हुआ ना, क्योंकि उलमा ने इसके बारे में इतनी सारी इंटरप्रिटेशंस इसकी की हैं कि इंसान का मुस्तकर और मुस्तौदा क्या है, और सारी ठीक है, सभी ठीक है। वो कहते हैं कि इंसान का मुस्तकर माँ का पेट और मुस्तौदा बाप की पुश्त है, यानी बाप की पुश्त में नुतफा था ना, नुतफे से फिर माँ के पेट में आया, तो वो उसका मुस्तकर। आपको याद होगा सूरह अनाम में मैंने इसके बारे में बड़ा बताया था, क्योंकि वहां पे भी आया था ना, वह अल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा तिन मुस्तकर व मुस्तौदा, वहां पे भी आता है और यहाँ पे फिर वही बात है। तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जितने ये सारी मुफसिरीन की आरा है सभी सही है, इसलिए कि इंसान का एक थोड़ी है मुस्तकर और मुस्तौदा, एक के बाद दूसरा दूसरा। आप जितनी मर्जी अपनी परमानेंट रेजिडेंस है, वो कहते हैं आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, हम लिखते तो हैं अपना परमानेंट एड्रेस जहां हम रहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताएं क्या ये परमानेंट है, उसके बाद भी एक और है ना एड्रेस, उसके बाद चलो सारी जिंदगी भी कोई एक जगह पे रहता है, लेकिन फिर भी उसके बाद कब्र है, उसके बाद हशर है। अल्टीमेट जो मुस्तकर है इंसान का, वो तो जन्नत या जो भी उसका ठिकाना होगा वो ही है ना। और मुस्तौदा उससे पहले जो भी टेम्पररी है वो ठिकाने सारे मुस्तौदा है। तो इंसान पहले नुतफे के तौर पे मुस्तौदा था कि बाप की पुश्त में था, फिर मुस्तकर वो करार उसने पकड़ा माँ के पेट में, वो उसकी परमानेंट रेजिडेंट बन गई। फिर उसके बाद फिर वो दुनिया में आया, फिर बाज ने कहा कि दुनिया की जिंदगी जो है मुस्तौदा है और आखरत मुस्तकर है, बाज ने कहा कि दुनिया की जिंदगी मुस्तौदा है और जो कब्र है वो मुस्तकर है, क्योंकि वहीं पे वो फिर रहेगा रहेगा जब तक कयामत नहीं आएगी। अल्लाह हू अकबर। इमाम शौकानी ने एक और तफसीर की है, उन्होंने कहा है कि जो माँ का पेट है ना वो है मुस्तौदा, वो मुस्तौदा है, और फिर मुस्तकर जो है वो जाहिर है कि इंसान वहां से फिर मुस्तौदा असल में तो जो इंसान की परमानेंट जगह है वो तो बिल्कुल आखरत ही है ना। तो वो कहते हैं कि उसके बाद वो मुस्तकर जो है वो उसका उसके दफन होने की जगह। तो मुस्तौदा क्या था? रहमे मादर। अब सारा सफर करके फिर वो अपनी करारगाह पे पहुंच गया, कुछ नहीं था और फिर कुछ नहीं हो गया, दफन हो गया। तो वो चाहे मिट्टी में गया, चाहे समंदर में गया, चाहे मछली के पेट में गया, कहां गया, असल बात आपको बताने की ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह को इल्म है। अभी मैंने सारी आपको बातें बता दी ना, निचोड़ क्या है बात कि किसके ऊपर एम्फोसिस, वो ये नहीं है कि आप इन चीजों को ही समझते रहे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए एक बातें हैं कि क्या क्या हो सकती है। असल बात जो समझने की है ना वो ये, अल्लाह ताला को सारा इल्म है। लोग ना उनसे पूछ रहे होते हैं क्या बताएं हमारे लिए वहां का सफर कैसा रहेगा, फलां जगह पे हम जाएं वहां पे कारोबार करें तो वो कैसा निकलेगा, भी इस जगह मूव हो जाए हमारा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। ओ अल्लाह को तो पता है तूने किस मिट्टी में जाना है, उसको तो ये भी पता है तूने कहां किस जगह पे तू तेरा मकाम होगा, तेरी कब्र होगी, अल्लाह तो वो भी जानता है। अब आज से सोचे, आज से 50-60 साल पहले हम तो थे भी नहीं, हा? हम थे भी नहीं। और देखिए उसके बाद हम दुनिया के अंदर आए तो हमें कहां पता कि हमारे कौन से बच्चे पैदा होने हैं। अल्लाह ताला को ये पता है कि ये किस बाप का नुतफा और किस मां का पेट इसकी करारगा बनेगा, इसका मुस्तौदा और मुस्तकर बनेगा, ये भी वो जानता है किस मां के पेट में ये होगा और किस बाप का मुस्तौदा होगा, किसकी पुश्त से निकलेगा, वहां पे क्या होगा, ये उसको उस नुतफे को भी उस वक्त जानता है कि इस नुतफे से ये बंदा बनना है जिसने यहां मरना है और फिर जिसने हशर में इधर खड़े होना है और फिर इसने जन्नत में ये मकाम पाना है। अल्लाह ताला को सब इल्म है, सुभान अल्लाह, उसके इल्म की वुसत देखें। ये है असल बात जो समझने की, बजाय आप सिर्फ इसमें ना उलझते रहिएगा कि क्या इसका मतलब और क्या इसका मतलब, और फिर किस मट्टी में वो दफन होगा तो वो उस मट्टी के अंदर किधर चला गया, उसमें रुल के उसके जर्रे किधर चले गए, या किस पानियों के अंदर वो डूब गया तो उसके जिस्म के जर्रे जर्रे होके वो पानियों में किधर किधर है, उसके जर्रे मट्टी में किधर किधर है, किसकी हड्डियां किधर भुर गई और वो मट्टी में रुल गई मिल गई, वो कहां पहुंच गया वो बंदा जो एक इंसान की सूरत में था, वो जर्रों की सूरत में होके उसके जर्रे देखे। वो बंदे ने कहा था ना अपने बच्चों से कि जब मैं मर जाऊं तो उसके अंदर इतना अल्लाह का खौफ था, कहता है जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को जला देना, कुछ ऐशेस को पानी में बहा देना, कुछ को हवा में उड़ा देना, कुछ को कहीं फेंकाना। आए क्यों अल्लाह ताला ने उसको सारे को एक जगह बना के खड़ा कर लिया अपने सामने, पूछा क्यों तूने ऐसे कहा, कहता अल्लाह तेरे आगे खड़े होने के खौफ से। हाँ तो इंसान सोचता है कि मेरे जर्रे जो है पानी में बह जाएं, मिट्टी में उड़ जाएं, जमीन में रुल जाएं, तो पता नहीं कोई मुझे उठा सके या नहीं, या पता नहीं कोई जानता भी होगा कि नहीं कि मैं किधर पड़ा हूं। उस मिट्टी से लेके किसी ने बर्तन बना लिए, किसी ने अपनी दीवारों में चुन ली वो मिट्टी, किसके जर्रे किधर है वो रब जानता है। हम इतने ही भोले हैं कि हम ये सोचते हैं उसको ना पता होगा कि किधर मैंने पहुंचना है, हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स वो जानता है। इसीलिए तो वो जिधर किसी ने मरना है उसको भी जानता है। जब भी तो वो कहते हैं वो जहाज जा रहा था, उसकी तबीयत खराब हुई, वो जहाज वहां उतारना पड़ा, वहां पे वो फौत हो गया। वो निकला किधर से, उसने पहुंचना किधर था, वो हवाओं के अंदर है, लेकिन वो उसकी जगह अल्लाह ने लिखी है कि यहां इसको मौत आनी है, यहां इसने रुकना है, यहां इसकी कब्र बननी है, उसको वहीं उतारा जहाज को क्योंकि इसको यहां पहुंचना था। इसी वजह से तो इंसान अपनी मौत की जगह पे खुद चल के चला जाता है बाज दफा। ये अल्लाह जानता है यहां इसको इसकी मौत लिखी हुई है, तो उसका इल्म तो इतना मुहीत है, इतना मुहीत है हर चीज पे। अल्लाह अकबर। इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि कबीला आशर का एक वाकया कि वो लोग हिजरत करके मदीना पहुंचे तो दो जो कुछ तोशा और खाने पीने का सामान उनके पास था वो खत्म हो गया। उन्होंने एक अपना आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि आपसे पूछेंगे कोई खाने का इंतजाम हो सकता है। ये आदमी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे पहुंचा तो अंदर से आवाज आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत ही तिलावत कर रहे थे, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा। तो उसने ये जब सुनी तो ख्याल आया कि जब अल्लाह ने सारे ही अपने मखलूक का सब जानदारों का रिस्क अपने जिम्मे ले चुका है तो फिर हम क्यों किसी से कहें कुछ, तो हम भी हमें भी अल्लाह ही देगा, हम क्या जानवरों से भी गए गुजरे हैं कि वो हमें नहीं देगा जब वो सबको खिला रहा है। तो ये ख्याल आया ना वापस चले गए, कुछ भी कुछ कहा ही नहीं, वहीं से वापस चले गए, अपने वापस आके अपने साथियों के पास आ गए, कहा खुश हो जाओ तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की मदद आ रही है। तो उन्होंने समझा कि पता नहीं ये जाके वहां पे कह के आए हैं तो फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इंतजाम का वादा फरमाया है इसलिए आके हमें कह रहे हैं, तो वो मुतमईन होके बैठे। अब ये बैठे ही थे कि एक कोई दो आदमी आए, एक ने गोश्त और एक ने रोटियों से भरे हुए बर्तन उठाए हुए थे, तो वो लेकर आए हैं और इनको दे दिए हैं। तो इन्होंने खूब पेट भर के खाया, फिर जब बच गया तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि बाकी खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दें ताकि उसको आप अपनी जरूरत में भी इस्तेमाल करें। तो अपने दो आदमियों को ये खाना दे के आपके पास भेजा और जब आपकी खिदमत में वो हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह आपका भेजा हुआ खाना तो इतना लजीज इतना मज़ेदार था, तो हमने तो ऐसा खाना कभी खाया नहीं। आपने फरमाया मैंने तो कोई खाना ही नहीं भेजा। तब उन्होंने पूरा वाकया बयान किया कि ऐसे आदमी आया था और ऐसे उसने वापस चला गया, तो आपने फरमाया कि मैंने नहीं बल्कि उस जात ने भेजा है जिसने हर जानदार का रिस्क अपने जिम्मे लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो अल्लाह ताला रिस्क देता है कहा जाता है। एक और रिवायत आती है मूसा अलैहि सलाम के बारे में कि जब वो आग की तलाश में तूर पे पहुंचे तो वहां पे आग की बजाय अल्लाह ताला की तजल्लियात सामने आई, अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत अता फरमाई, फरमाया जाओ फिरौन की तरफ। तो ख्याल आया कि मैं अपनी बीवी को जंगल में तनहा छोड़ के आया हूँ, भला उसका उसको उसका क्या बना होगा, उसका कौन कफील होगा, वो खाना किसने दिया होगा। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि ये सामने पड़े हुए पत्थर की चट्टान पे लकड़ी मारे। उन्होंने लकड़ी मारी तो चट्टान फट गई, उसके अंदर एक दूसरा पत्थर था, हुक्म हुआ इस पे भी लकड़ी मारे, वो ये भी किया तो वो पत्थर फटा और अंदर से तीसरा पत्थर निकला, इस पर भी लकड़ी मारने का हुक्म हुआ, जब वो फटा तो उसके अंदर एक कीड़ा था जिसके मुंह के अंदर एक पत्ता था। अल्लाह ताला दिखाना चाहता था कि देखो मैं कहां तक भी अपनी मखलूक को रिस्क पहुंचा रहा हूं, तो आप कैसे फिक्र कर सकते हैं अपने बीवी बच्चों की। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे जब सब जानदारों का रिस्क दिया हुआ है तो फिर हम भी ये यकीन रखें कि अल्लाह हमें भी रिस्क देगा, ये यकीन रखें। और देखिए सारी मखलूक को वो रब खिला रहा है पिला रहा है और उसके खजाने खत्म नहीं होते। हम दो लोगों को खिलाने लगे हैं तो तुम्हारे मुंह बन जाते हैं कि हाय अल्लाह तीसरा क्यों आ गया, मेहमान घर आने लगे तो थे तब भी हमें फिक्र होने शुरू हो जाती क्या कहां से देंगे। अल्लाह अकबर। कुल्लुम फी किताब मुबीन, सब का सब एक खुली किताब में लिखा हुआ है, यानी अल्लाह ताला ये नहीं कि सिर्फ वो जानता है बल्कि एक खुली किताब में भी रिकॉर्ड बना हुआ है। इशारे का रिस्क भी कोई इंसान हदीस में आता है अपना रिस्क खाए बगैर उसको मौत नहीं आती, यानी जितना अल्लाह ने लिख दिया ना उसका भी एक जर्रा भी ऐसा नहीं होगा कि आप खाए बगैर मर सके, तो खा के ही मरेंगे फिक्र ना करें, कहीं नहीं जाता, कोई और नहीं छीन सकता आपका। तो फिर इतनी मसले क्यों है, हाय उन्होंने खा लिया हमारा, हमारा हक था उन्होंने छीन लिया, फलां कर लिया। वो जो जिसका आपको मिलना है वो तो आपका ही है, वो तो किसी को नहीं मिल सकता। और फिर इसी तरह इतना तकब्बुर होना, जी हमने इतना किया तो फिर हमने इतना कमाया, तो फिर हमने इतने जमा किया, फिर हमने ये सब कुछ हमारा बनाया हुआ है, हम सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड क्या होता है? अल्लाह ने ही दिया, कोई चीज सेल्फ मेड नहीं होती, सब कुछ अल्लाह ने एक किताब में लिखा हुआ है, वो सब कुछ जानता है। अल्लाह अकबर, हु वहु अल्लदी खलक समावाति वल अर्द। तौहीद समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे ही नहीं कुरान की आयत है, नहीं तौहीद समझाई जा रही है आपको, ये तौहीद है। मैंने आपको बताया ना 1 से 24 आयत तक तौहीद ही तौहीद है। किस बच्चे ने किस माँ के पेट में पैदा होना है, जन्म लेना है, वो माँ तो खुद अभी छोटी बच्ची घूमती फिर रही है, उसको क्या पता, लेकिन अल्लाह को पता है इस बच्ची ने बड़े होकर किसको जन्म देना है, उसको जिसको जन्म देगी उससे आगे किसने जन्म लेना है और उसके बच्चे कौन होंगे। अब इसलिए इंसान को कितना बेफिक्र कर देता है ना ये। बस मैंने आपको जैसे बताया कि पिछली सूरत भी और ये सूरत भी, तौहीद इनसे ना सीखी तो फिर कहां से सीखेंगे। तौहीद ही तौहीद है इनके अंदर कि इंसान अब अपना भरोसा अल्लाह पे ना रखे तो किधर जाए। फिर भी अगर इंसान फिकरात करता रहे, मुझे तो ये फिक्र है इसकी शादी का क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, और हम वहां जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हम इधर रहें कि उधर रहें, हम मूव करें कि ना करें, हम वहां पे जाएं तो मर ना जाएं कहीं, वहां पे जाएं तो कोई बीमारी होके ना हम अस्पताल पहुंच के वहीं पे ना मर जाएं। अल्लाह को पता है किसने किस मुल्क किस जमीन किस मिट्टी में जाना है, क्या वो ना जानता होगा आपकी शादी होनी है कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं, फलां होगा कि नहीं। हमारी हमारी सोचें तो यही होती है ना, यही है हमारी सोचें, दिन रात बस ये इन्हीं सोचों में हम घूमते फिरते रहते। जिसने इन सारी चीजों को टेक केयर कर लिया तो फिर हमारी सोच तो इस बारे में होनी ही नहीं चाहिए, हमारी सोच तो अपनी आखरत के बारे में होनी चाहिए। मगर रिस्क की परेशानी हमें इतनी लगी होती है, जॉब मिल जाए, इसको ये मिल जाए, कारोबार चल जाए, फलां हो जाए। अल्लाह हू अकबर। तो ये वाली आयात जो है पहले भी बताया था, इतनी एक्सप्लेनेशन की नहीं है बातें, इसमें बस यकीन लाने की बातें हैं। ईमान तो ठीक है, हम कहते हैं हमारा कुरान पे ईमान है, मगर इन आयतों पे ईमान है कि नहीं, ये सिर्फ बातें ही हैं। वो अल्लाह खलक समावाती वल अर्द फी सित्तती अय्याम, वो अल्लाह वो जात है, यानी आपको बताया जा रहा है कि उस एक रब की इबादत करो, वो तुम्हारा इलाह है। क्यों वो क्यों इबादत के लायक है, सिर्फ वो ही क्यों, कोई और भी क्या ये दावे कर सकता है? किसी को भी पूछो, किसी को खड़ा कर लो, वो बता दे कि क्या वो जिसको वो इलाह मानता है, जिसको वो पूजता है, वो भी क्या ये कर सकते हैं? अ इलाहु मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई इलाह हो सकता है? तो तुम अल्लाह के साथ उनकी भी पूजा शुरू कर देते हो। उसने तो पैदा किया आसमानों को और जमीन को। इस पर्सपेक्टिव के साथ आप इन आयात को पढ़ेंगे ना तो फिर समझ आएगी बात कि ये क्यों बताई जा रही है हमें, किधर दर दर फिरते हो, किधर ठोकरें खाते फिरते हो, किसके आगे झुकते फिरते हो, ये तुम्हारा रब तो ये है। तो फिर तो सबसे ही इंसान मायूस हो जाता है, फिर उनकी तरफ जाने को दिल ही नहीं करेगा, फिर क्या उसके हाथ में है। मेरा रब तो वो है जो इस कीड़े को भी पत्थर के अंदर भी इसको गिजा पहुंचा रहा है, मेरा रब तो वो है जो मुस्तकर और मुस्तौदा मेरा जानता है, उसने तो किताबे मुबीन में ये सब कुछ लिखा। तुम छुपाते हो या जाहिर करते, तुम्हारे सीनों के भेद तक वो जानता है। कौन है और जो ऐसा है, कौन? तो फिर क्या उसी की इबादत नहीं करनी चाहिए?